तीन सार वीत राग विज्ञान था, शिव स्वरूप शिव का नमाहु त्रियोग समारी के। तीनों योगों की सावधानी पूर्वक आत्मा के अंदर छिपे परमात्म तत्व को, जो शिव स्वरूप है और वीतराग विज्ञानता का पर्याय है, उसको नमन करके आगे तृतीय ढाल के अंतिम श्लोक पर चलती हूँ, जहाँ सम्यक दर्शन की बात चल रही है। तो श्लोक नंबर है 17। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक तान लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होए। माने तृतीय ढाल का पूरा सार इस पद्य के ना माध्यम से बता दिया कि सम्यक दर्शन, जिसके लिए कहा गया कि ये केवल देव गति को दिलवाने वाला है, इसको प्राप्त करने के बाद कोई भवनत्रिक में जाएगा, वनवासी बनकर ज्योतिषी देवों में नहीं जन्म लेगा और स्थावर जीवों में नहीं जन्म लेगा, विकलत्रय में जन्म नहीं लेगा, दो इंद्री चार इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री प्राणी में नहीं जन्म लेगा, और यदि कभी नरक में जन्म लेना पड़ा उसको, जिसने पहले नरक की आयु बांध ली और फिर उसको सम्यक दर्शन हुआ, तो प्रथम नरक तक जा सकते हैं, जैसे राजा शेणी आज प्रथम नरक में मध्यम आयु को भोग रहे हैं, 84,000 वर्ष की। तो ऐसे सम्यक दर्शन से युक्त मानव की बात करते हैं कि दौलत राम जी अपने को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे दौलत समझो कि ये मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, बहुत सारी सीढ़ियां हैं और उस महल पर पहुंचना है जिसका नाम है मोक्ष का महल, जिसका नाम है सिद्धि महल, जिसका नाम है निर्वाण धाम, उसकी प्रथम सीढ़ी है। या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे, इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते, यानी जितना ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान बन जाएगा सम्यक दर्शन होने के बाद, जितना भी चारित्र है वह सम्यक चारित्र बन जाएगा, और अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो सारा का सारा सब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के रूप में संसार का ही कारण रहेगा। इसलिए अंत में सार समझ लो, इसलिए आप सब धारो भव्य पवित्रा, हे भव्यात्मन इस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। कुछ भी नहीं खर्च करना है, कोई आपको बाजार नहीं जाना है, कोई द्रव्य नहीं खर्च करना है, बस केवल अपनी श्रद्धा को समीचीन बनाना है कि जो कुछ भगवान ने कहा है वही सच्चा है, सच्चे देव सात गुरु पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। इसलिए हे दौलत समझ सुन चेत सयाने, सयाने माने होशियार, चतुर, कुशल, विद्वान, असली विद्वत्ता तेरी इसी में है कि हे चेतन, हे दौलत अपनी आत्मा के माध्यम से, अपने को संबोधन देने के माध्यम से सारी जग के भव्य प्राणियों को संबोधन दे रहे हैं। काल वृथा मत खो, ये समय बेकार में मत खो, बेकार मत जाने दो, क्योंकि कतेयम न गमिष्यति, जो चला गया काल वो वापस नहीं आएगा, और जब जागो तब सवेरा। आज यदि आपको सम्यक दर्शन हो गया तो समझो पिछला भूल जाओ, आज से हम सम्यक दृष्टि बन गए, बस हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया, क्योंकि कहते हैं ये नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हुए। ये बात मान, ये मनुष्य भाव फिर मिलना बहुत कठिन है, जैसे किसी समुद्र के अंदर कोई रत्न गिर जाए तो उसके अंदर कितना ढूंढते रहो ढूंढते रहो ढूंढते रहो, मिलना बहुत कठिन है। और किसी को मिल जाए तो समझो कि उससे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं। तो ऐसे सौभाग्य की क्षणों को हमने पाया है, समुद्र में खोए रत्न के समान संसार समुद्र में खोए हुए सम्यक दर्शन को हमने प्राप्त किया है। तो आगे नरभव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत कठिन है। यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ, हमारे विचार सही नहीं हुए, हमारी दृष्टि अच्छी नहीं बनी, सम्यक दृष्टि हम नहीं बन पाए, तो पता नहीं कब मनुष्य की पर्याय मिलेगी। इसलिए आप इस ढाल का, और बल्कि इसी ढाल का नहीं, पूरे छह ढाला के सार को इस पंक्ति के माध्यम से बता दिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन पहले इसीलिए रखा गया कि आपका दर्शन सम्यक होगा तो ज्ञान और चारित्र अपने आप सम्यक बन जाएंगे और तब आप मोक्ष मार्ग में लग जाएंगे। मोक्ष मार्ग एक ही है, लेकिन तीन चीजों की एकता करने से वो मोक्ष मार्ग हमारे लिए सरल हो जाएगा। इसलिए दुर्लभ मनुष्य पर्याय के अंदर हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए आप तैयार हो जाएं। प्राप्त कर लिया है समझो, इतना इतना सुना है तो सभी ने प्राप्त कर लिया है, सबको विश्वास है ना कि हम सम्यक दृष्टि हैं, विश्वास है तो आप अपने अपने स्थानों से ही अपने हैंड रेज कर दें, हाथ उठाएं कि हम सम्यक दृष्टि हैं। आपने ऊपर कोई शंका ना करें कि पता नहीं हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं, भाई इतना थर्मामीटर आपको दे दिया गया कि सच्चे देव साध गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो आप सबने हैंड रेज कर दिया, देखो कि हम सम्यक दृष्टि हैं, आपने बता दिया तो आप अपना समय व्यतीत फालतू में व्यतीत नहीं करना है, अपने सम्यक दर्शन को आगे के लिए एकदम दृढ़ रखना है। तो अब इस ढाल का समापन, और अगली ढाल हम 2 या 3 तारीख से, 3 तारीख से शुरू करेंगे, क्योंकि 1 तारीख को आपकी परीक्षा होगी, 2 जून को आपका रिजल्ट आएगा, फिर 3 जून से हम आगे की क्लास शुरू करेंगे। जिन शासन की श्रद्धानी मैं जिन वर वाणी बोल रही हूँ, गुरुओं की वाणी में केवल शब्दों का रस घोल रही हूँ, जिन वो गुरुओं की वाणी में केवल शब्दों का रस घोल रही हूँ। निज वाणी टू टूटी फूटी है, निज वाणी टूटी फूटी है, कैसे बोलूं तोल रही हूँ, जिन वाणी की प्रतिकृति माँ ज्ञानमती को टटोल रही हूँ। और 56 साल से टटोल रही हूँ मैं, और तभी रत्नत्रय को प्राप्त किया है। तो जिन वाणी की प्रतिकृति माँ ज्ञानमती को टटोल रही हूँ, इनने बताया रत्नत्रय से आत्म प्रभावना सतत करो, दान तपो दिन पूजन द्वारा जिन शासन को नमन करो, सम्यक दर्शन का प्रभावना अंग शास्त्रों में बतलाया। हमने आपको सारे अंग बता दिए हैं, अंत में सम्यक दृष्टि जो होगा पग पग पर, जिनेंद्र भगवान के वचनों के माध्यम से वो जिन शासन की जिन धर्म की जिन गुरुओं की प्रभावना ही करना चाहेगा। सम्यक दर्शन का प्रभावना अंग शास्त्रों में बतलाया, वज्र कुमार मुनि ने सर्वांगीण इसे था अपनाया। कहानी सुनी है कि जब पौधों का रस निकलने लगा और रानी परेशान हो गई, तब एकदम आसन कंपायमान हो गया। किसका? मथुरा नगरी के अंदर उर्वीला रानी ने अष्टानिका में रथ की तैयारी की, लेकिन दूसरी रानी ने उसे रोक दिया कि पहला पहले मेरा रथ निकलेगा। राजा का उस पर बहुत प्रेम था, तब रानी उर्वीला उपवास करके और वज्र कुमार मुनि से कहती है कुछ तो चमत्कार करो मुनिवर। तब मुनि ने विद्याधर को बुलाया और उस विद्याधर ने जिन धर्म की प्रभावना करके जिनेंद्र भगवान का रथ धरती पर ही नहीं आकाश में भी घुमाया और चारों तरफ जैन धर्म की जय जयकार होने लगी थी। तो वज्र कुमार मुनि ने सर्वांगीण रूप से वात्सल्य भाव भी दर्शाया था, स्थिति करण भी बताया था और प्रभावना तो करके जिन धर्म के रथ को निकाला था। प्रथमाचार्य शांति सागर ने भी प्रभावना बहुत किया, कुंथल गिरी में मुनि द्वय की प्रतिमाएं स्थापित सुखद किया। वहां देश भूषण और कुलभूषण मुनिराज की प्रतिमाएं विराजमान हैं, उनको आचार्य शांति सागर महाराज ने स्थापित किया। बाहुबली भगवान की कुंभोज के अंदर स्थापित किया। दहेगांव के अंदर 20 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा और षटखंडागम ग्रंथ को जो दीमक के पेट में जा रहे थे, ऐसे षटखंडागम के ग्रंथ यदि सामने आए हैं तो आचार्य शांति सागर महाराज का उपकार हमें मानना पड़ेगा। बहुत बड़ी प्रभावना उन्होंने किया कि ये षटखंडागम ग्रंथ हमारे सामने आ जाएं। विद्वानों को लगाया, दसियों साल लगे और विद्वानों ने कन्नड़ से उसको पहले संस्कृत और हिंदी लिपि में लिखा, प्राकृत में लिखा, उसके बाद उनका अनुवाद किया। आज वो 16 के 16 ग्रंथ अपने सामने हैं और ज्ञानमती माता ने इस युग के अंदर उन षटखंडागम ग्रंथों के 6,841 सूत्रों पर 3200 पेज की संस्कृत टीका लिखी है, जिसका नाम है सिद्धांत चिंतामणि टीका। ये वीरसेन आचार्य के बाद 1200 साल के बाद आज ये टीका पुनः प्रारंभ की है, माता ने लिखा है। उसका हिंदी अनुवाद सहित भी 13 पुस्तकें सामने आ गई हैं हिंदी सहित, और 14वीं पुस्तक पर कार्य चल रहा है। तो आचार्य शांति सागर महाराज, ज्ञानमती माता जी, इन लोगों ने देव सात गुरु के द्वारा खूब प्रभावना की है। प्रथमाचार्य शांति सागर ने भी प्रभावना बहुत किया, कुंथल गिरी में मुनि द्वय की प्रतिमाएं स्थापित सुखद किया। देव शास्त्र गुरु तीनों का कर सृजन सदा उपदेश दिया, अपने अंतिम उपदेशों में संयम पालन का संदेश दिया। अंतिम उपदेशों में संयम पालन का उपदेश दिया। क्या कहा था? बाबा नो संयम धारण करा, भीव नका डरो मत, संयम धारण करो, ऐसा कहा था आचार्य महाराज ने। 36 दिन की संलेखना में आवाज बिल्कुल डाउन हो गई थी तो भी संबोधन देते हुए कहा था संयम धारण करो। चौतरफा फैले मिथ्यात्व के अंधकार को दूर किया, जनता को सम्यक्त क्रिया सिखला, तम को चकचूर किया। तभी गुरुणां गुरु बनकर जग को सच्चा उपहार दिया, ज्ञानमती माता ने वही स्मरण सदा उपकार किया। ये प्रभावना अंग सम्यक्त का जीवन में अपनाना है, हमें चंदनामती विश्व में जैन धर्म पहुंचाना है, हम सबको मिल करके विश्व में जैन धर्म पहुंचाना है। शेर गाय जहाँ एक साथ आ मैत्री भाव दिखाते हैं, ऐसे सर्वोदय जैन शासन के गीत हम गाते हैं, ऐसे सर्वोदय शासन के गीत सदा हम गाते हैं, गीत सदा हम गाते हैं। ऐसे सर्वोदय शासन की प्रभावना कीजिए, खूब अपना ज्ञान वृद्धिंगत करिए। सभी जिज्ञासु भाई बहनों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। तैयारी करें, कल सुत पंचमी की कथा सुने और उस सुत की आराधना करते हुए 1 तारीख को परीक्षा दें, सब उत्तीर्ण हो, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जाओ।